देवियों सज्जनों, आप सबको नमस्ते। ईशावास्य उपनिषद की चर्चा में आज हम उसका आठवां मंत्र लेंगे। पहले हमने ईशावास्य से शुरू किया, वो सारा समस्त संसार में ईश्वर समाया हुआ है। जो उसको नहीं जानता, खुद को रियलाइज नहीं करता, वो दुख में पड़ता है। और इस संसार में रहना है तो काम करते हुए ही आप सुखी और हेल्दी रह सकते हैं। जो खुद को सब में खुद को रियलाइज कर लेता है, अपने आप को समझ लेता है, फिर दूसरों में भी खुद को देखने लगता है, खुद को भी दूसरों में देखने लगता है और खुद में भी दूसरों को देखने लगता है, और उससे दो फायदे होते हैं। ना उसमें कोई नफरत का भाव बसता है, ना कोई अटैचमेंट और इन्फैचुएशन रहता है, और जिसके फल स्वरूप उसको कभी दुख भी होता नहीं है या शोक भी नहीं होता। अब सवाल है कि मैं जब खुद को अंदर जाऊं तो क्या देखूं? जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, आत्मा या परमात्मा, उसकी क्या कैसा है वो? देखने में कैसा, सुनने में कैसा, शरीर कैसा, बनावट कैसा, कैसे हम उसको रिकॉग्नाइज करें, ये मंत्र उससे रिलेटेड है। तो मेरे साथ मिल करके बोलिएगा, टुकड़ा टुकड़ा लेंगे। सपर्यगा छुक्र मकाय मव्रणमश्नाविरम, बोलिए, सब मिलकर बोलिए। शुद्धम अपापविद्धम कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूर्याथा तथ्यतो अर्थान् व्यदधा शाश्वतीभ्य समाभ्य। मैं इसीलिए आपसे बुलवाता हूं, ये संस्कृत भाषा भी बड़ी चमत्कारिक भाषा है। आप अगर उसको ठीक ठीक मुंह में बोलते हैं तो उसकी वाइब्रेशन से भी आपको काफी सारा रिलैक्सेशन होगा। इसकी शब्दों की जो बनावट है, जो संधि और समास की बनावट है, शुरू जिनको अभ्यास नहीं है, जीभ में तो आएगा नहीं, पर अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, आपकी जीभ की और माउथ की भी इतनी बढ़िया एक्सरसाइज होगी, क्योंकि इतने कठिन कठिन वर्ड्स होते हैं, तो आपके टांग ऊपर नीचे सब जगह घूम जाएगा। इसलिए आपको बोलना चाहिए, अपने आप नहीं बोलते हैं तो मिलकर बोलें। तो स मतलब वो, मजेदार बात है कि अगर आप सनातन धर्म के पुराने शास्त्रों को देखेंगे, वेद उपनिषद वगैरह जो बहुत सबसे पुराने शास्त्र हैं, उसमें ईश्वर का कोई नाम पता नाम वगैरह नहीं मिलेगा। और उसको जिस वर्ड से जनरली ईश्वर को बारे रेफर किया जाता था, मोस्ट ऑफ वो वर्ड्स प्रोनाउन होते थे। अब प्रोनाउन को संस्कृत में सर्वनाम बोलते हैं, वो, ये, दिस, दैट। मजेदार बात है, अंग्रेजी में तो प्रोनाउन का कोई ज्यादा खास मीनिंग नहीं होता, पर ये जो दिस और दैट को संस्कृत में सर्वनाम बोलते हैं, वो बड़ा बहुत ही मीनिंगफुल होता है। नाम का मतलब नेम, आपका एक पर्टिकुलर नाम है, मेरा एक पर्टिकुलर नाम है, और वो नाम मुझे एक्सक्लूसिव बनाता है, दूसरों से अलग करता है। जब आप 100,000 लोगों के बीच में मेरा नाम लेकर बुलाएंगे तो मैं ही रिएक्ट करूंगा, बाकी नहीं करेंगे। आप किसी का भी नाम लेंगे वही रिएक्ट करेगा, दूसरा नहीं करेगा, ये एक्सक्लूसिव करता है, ये नाम है। पर सर्वनाम, मैं ऐसा नाम जो सब में लगता हो, जो इंक्लूसिव होता हो, जो आपको अलग नहीं कर देता हो, उसे कहते हैं सर्वनाम। जब आप कहते हैं कि वो उसने बोला, तो उसने किसने बोला, वो आप को छोड़कर सारी दुनिया वो में आ जाता है। ईश्वर का कोई पर्टिकुलर नाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप कोई भी नाम लोगे वो उसका एक सिर्फ पर्टिकुलर पार्ट को बारे में बताएगा, रेस्ट ऑफ थिंग्स अननोन रह जाएगा। तो जितने भी हम ईश्वर के नाम देते हैं वो उसके कोई ना कोई पर्टिकुलर गुण कर्म स्वभाव को ही रेफर करता है, ओवरऑल ईश्वर की के बारे में नहीं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने उसे रियलाइज किया, अनुभव किया, उनके मुंह से कभी ये शब्द नहीं निकला कि वो ईश्वर है, वो प्रभु है, वो भगवान है, वो परमात्मा है, ऐसा शब्द वो नहीं, वो ब्रह्मा है, विष्णु, ऐसा शब्द कभी नहीं निकला। वो क्या शब्द निकला? वो ये, इससे ज्यादा वो कुछ बोल ही नहीं पाते थे। आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? तो वो जिसको डिफाइन करना मुश्किल है वो कैसा है, क्योंकि आम पब्लिक के तो बताना पड़ेगा ना। सब परियगात, वो हर जगह जाता है, मतलब दौड़ के जाओ, गाड़ी से जाओ, जेट से जाओ, स्पेस शटल से जाओ, कहीं भी पहुंचो वो आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एकदेशी हैं, आप बड़े लिमिटेड हैं, आपको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए मूव करना पड़ता है, इसलिए आप में मूवमेंट है। पर जो ऑलरेडी इतना चौड़ा लंबा चौड़ा है उसको मूव करने की जरूरत नहीं। अब यहां से फ्लाइट लेकर के यूरोप जाओ, वहां भी प्लानेट, यही अर्थ प्लानेट मिलेगा। भारत जाओ, वहां भी यही अर्थ, क्योंकि अर्थ यूरोप भी उसी के अंदर है, भारत भी उसके अंदर है, अफ्रीका भी उसके अंदर है। आपको मूव करना पड़ता है, प्लानेट अर्थ को अपने अंदर मूव नहीं करना पड़ता है। पर जहां प्लानेट की लिमिटेशन है वहां पहुंचने के लिए उसको मूव करना पड़ता है। तो ईश्वर को मूवमेंट क्यों नहीं करना पड़ता है? क्योंकि सब जगह है भाई, जहां कुछ भी नहीं वहां भी वो है, सपर्यगात, ऑल परवेसिव है। शुक्रम, चमकीला है, प्रकाशमान है। अकायम, उसका कोई शरीर नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, कोई फॉर्मलेस है, बॉडीलेस है। काय कितने शरीर को, क्योंकि उसका कोई फॉर्म नहीं है, इसलिए उसमें कोई छेद नहीं है, कोई सेंसेस नहीं है, कोई इंद्रियां नहीं है, कोई वाउंड्स नहीं है। अश्नाविरम, क्योंकि उसका कोई पर्टिकुलर बॉडी नहीं है, इसीलिए उसका कोई बनावट स्ट्रक्चर भी नहीं है। श्राविर कहते हैं जो हमारे अंदर के वाइन्स होते हैं, नर्व सिस्टम्स होता है, जो ओवरऑल इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर लेस है और वो शुद्ध है, प्योर है, किसी भी तरह की कोई इम्प्यूरिटी उसके अंदर नहीं है। अपाप विद्धम, किसी तरह का कोई गलत चीजें उसमें नहीं है। कवि है, कवि का मतलब ओमनिशियंट है, वो सब कुछ जानता है। मनीषी, आपके माइंड को भी रीड करने वाला अगर दुनिया में कोई है तो वही है। परिभू, हर जगह फैला हुआ है, और इंटरेस्टिंगली स्वयंभू है, वो सेल्फ मेड है। दुनिया में बाकी सब कुछ मेड बाय समथिंग है। इवन दुनिया में कोई भी सूरज हो, चांद हो, प्लैनेट हो, कुछ भी हो, वो किसी के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं, पर वो सेल्फ मेड है। और लास्ट, जो वस्तु जैसा है, जिसकी जितनी जरूरत है, उनको उसी हिसाब से, उनकी जरूरत के हिसाब से वो बनाता है। तो बहुत सारे एडजेक्टिव्स है। अगर किसी को समझना है या किसी को समझाना है ईश्वर क्या है, ये मंत्र अपने आप में होल है। आप पूरा वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, गीता पढ़ो, धर्मशास्त्र पढ़ो, इससे अच्छा है कि यही मंत्र को आप याद करो, उसके एक एक वर्ड को ठीक से समझ लो, दिमाग में बैठा दो, खुद भी समझ जाओगे, दूसरों को भी समझा सकते हो वो ईश्वर क्या चीज है, कैसा है, उसका फॉर्म क्या है, है या नहीं है। दूसरा, इसी मंत्र में आपको मिलेगा, हमारे हिंदू भाइयों में, बहनों में एक शब्द बार बार हम यूज करते हैं, वो साकार है, निराकार है, सगुण है, निर्गुण है। ये मंत्र उसी सगुण और निर्गुण को भी बताता है। ईश्वर निर्गुण है मतलब कुछ गुण उसमें नहीं है। क्या नहीं है? उसमें शरीर नहीं है, उसमें स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें पाप नहीं है। निगेशन को निर्गुण कहते हैं, कुछ गुण जो निगेट है होता है। और कुछ गुण है वो कवि है, ओमनीशियंट है, ओमनीप्रेजेंट है, ओमनीपोटेंट है, एक्सेट्रा, ये सगुण है। देवियों सज्जनों, ईश्वर है या नहीं है ये डिबेट का विषय नहीं होता, ये रियलाइजेशन का विषय है। रसगुल्ला का स्वाद कैसा है, नमक का स्वाद कैसा है, ये कोई डिबेट का विषय नहीं होता। ये डिबेट का विषय कब बनेगा? जब आप मुंह में बोलोगे। कोई पूछे कि बताओ भाई रसगुल्ले का स्वाद क्या है, और आप उसको डिस्क्राइब करते जा रहे हो, मीठा है, कैसा मीठा, ऐसा मीठा, वैसा नहीं, बड़े दिमाग लगा के बहुत समझा रहे हो, सामने वाला मानेगा नहीं भी मानेगा। अगर मानेगा तो अपने ढंग से मानेगा, उसको लगेगा अच्छा ये डोनट्स की तरह होगा, वो कैंडी की तरह होगा, वो चॉकलेट की तरह होगा, क्योंकि बोलने वाला भी शब्द यूज कर रहा है, सामने वाला शब्दों से समझेगा। दूसरा तरीका है, आप अपने फ्रेंड को जिसको रसगुल्ले के बारे में कुछ नहीं पता, दो चार रसगुल्ले खरीद के ले आओ, खिलाओ, बोले चखो, जो स्वाद तुम्हें लगा वही स्वाद है। रसगुल्ले और कैंडी में क्या फर्क है, गुलाब जामुन में क्या फर्क है, जिलेबी में क्या फर्क है रसगुल्ले से, चखो और जानो। तेलियों सज्जनों, देर इज नो अदर वे टू डिस्क्राइब व्हाट इज द टेस्ट ऑफ रसगुल्ला एंड व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन रसगुल्ला एंड गुलाब जामुन। द टेस्ट की बात कर रहा हूं, या डोनट्स या कैंडी या और कोई स्वीट, कोई भी खाना। तो जो इसको खुद एक्सपीरियंस करते हैं उनका नॉलेज ज्यादा क्लोज टू द रियलिटी होता है। जो किताब पढ़ के सुन के जान के करते हैं वो सुपरफिशियल होते हैं, और जहां जहां सुपरफिशियलिज्म होती है डिबेट वहां वहीं होता है। ईश्वर नहीं है बोलने वाले को हम एथिस्ट कहते हैं, है कहने वाले को हम थेइस्ट कहते हैं, आस्तिक या नास्तिक कहते हैं। पर मजेदार बात है, दोनों में बेसिक में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि जो मानता है ईश्वर है वो भी बेचारा मानता है, बिलीव करता है, और जो कहता है ईश्वर नहीं है वो भी कोई रिसर्च करके एक्सपीरियंस करके नहीं बोलता है कि नहीं है, वो भी बिलीव करता है कि देर इज नो गॉड। क्योंकि वो बिलीव करता है कि देर इज नो गॉड, उसने सुपरफिशियली काफी सारे लॉजिक्स इकट्ठा कर लिया, और कोई बिलीव करता है कि गॉड है उसने सुपरफिशियली कुछ लॉजिक्स इकट्ठा कर दिया। कभी एथिस्ट अकड़ के बोले कि मैं ज्यादा प्रोग्रेसिव हूं, मत समझिए कि वो आपसे ज्यादा कुछ एडवांस्ड या प्रोग्रेसिव है, वो भी उतना ही बिलीवर है जितना मानने वाला बिलीवर है। बोथ आर बिलीविंग समथिंग, वन बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड, अनदर बिलीव्स दैट देयर इज ए गॉड, दैट्स इट। दोनों में एक कॉमन चीज क्या है, दोनों बिलीव करते हैं, नो वन नोज द ट्रूथ। इसलिए ये कोई रिलीजियस आदमी नॉन रिलीजियस आदमी से बेटर होता है ये मानना भी गलत है, कोई एथिस्ट थेइस्ट से बेटर होता है ये मानना भी गलत है, क्योंकि आफ्टर ऑल दोनों की बेसिक तो बिलीव है। हां, जब कोई ऋषि बोलता है, कोई सेंट बोलता है, कोई रियलाइज्ड पर्सन बोलता है, फिर उसकी बात अलग है, पर वो डिबेट में नहीं जाता, वो सिर्फ एक्सप्रेस कर देता है कि ईश्वर है, मानना न मानना तुम्हारे ऊपर है। तुम अगर चखे नहीं हो रसगुल्ला आज तक, तुम दुनिया भर के मिठाइयों से कंपेयर करते रहो, तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो जो रियलाइज करता है वो समझा सकता है कि ईश्वर क्या है, पर प्रॉब्लम है कि उसकी लैंग्वेज इतना लिमिटेड होता है, लैंग्वेज की अपनी लिमिटेशन होता है, ये बहुत मुश्किल होता है कि जो आपने रियलाइज किया उसको आप बता पाओ। और जो भी लैंग्वेज यूज करके हमारे ऋषि मुनि बताए हैं या बताते हैं वो कॉन्ट्रोवर्शियल होता है, क्योंकि वो बोलने वाला जिस लेबल से बोलता है, समझने वाला उस लेबल का ना होने पर दोनों में इतने गैप रहता है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में अगर मेंटली बराबरी ना हो तो फिर टीचर की बातें स्टूडेंट नहीं समझ पाता। कभी कभी स्टूडेंट का क्वेश्चन भी बहुत सारे प्रोफेसर नहीं समझ पाते। स्टूडेंट का आईक्यू अगर प्रोफेसर से ज्यादा हो तो प्रोफेसर रटा रटा या बुकिश हो, उसको लगता है कि स्टूडेंट बड़ा बकवास करता है, बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, मिस्चीवियस है। तो दोनों जब बराबर लेवल पर होते हैं तो ज्ञान, सही ज्ञान सामने आने लगता है। तो ऋषि की भाषा भी समझने के लिए थोड़ा हमें अपनी साधना से, तपस्या से उस लेवल पर आने की कोशिश करनी चाहिए। अब आते हैं टॉपिक पर। सपर्यगा छुक्रमकाय, वो ईश्वर उस सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक है क्योंकि अकाय है, शरीर नहीं है। आप सर्वव्यापक, सर्वव्यापक समझते हैं जो सब जगह होता है। आप सब जगह नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? रीजन क्या है? किसने आपको रोका सब जगह अपना मत होइए? क्योंकि आपके पास एक बॉडी है। अब बॉडी एक पर्टिकुलर लिमिटेड जगह ही घेरता है, दैट्स इट। आप थोड़ा ज्यादा मोटा हो जाएंगे, ज्यादा जगह घेरेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हवा है, आपसे ज्यादा सटल है, ज्यादा सूक्ष्म है, तो ज्यादा जगह घेरता है। पर इतना नहीं कि सब जगह होगा, क्योंकि उसमें भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि उसका एक फॉर्म है। वो इनविजिबल, आंखों में नहीं देखा जा सकता, पर उसका फॉर्म है जिसको आप स्किन से या बॉडी से आप फील कर सकते हैं। फॉर्म सिर्फ देखने लायक नहीं होता है। पांचों इंद्रियों से कहां से भी अगर जो जाना जाता है उसका एक फॉर्म है। पानी है, आपसे थोड़ा ज्यादा जगह घेरता है क्योंकि वो आपसे ज्यादा सेटल है। तो जो चीजें जितना ज्यादा उसका फॉर्म, उसका बॉडी जितना सेटल होता जाएगा, वो उतना ज्यादा जगह घेरता जाएगा, ज्यादा फैलता जाएगा। और अगर आप बॉडी लेस हो जाते हैं, फिर आपके लिए आप सब जगह होंगे। एनर्जी कहां नहीं है? जहां मैटर होगा वहां एनर्जी नेचुरली है, क्योंकि मैटर कोई अलग चीज तो है नहीं, एनर्जी का एक फॉर्म है। पर मत सोचिए कि जहां जहां मैटर है वहीं वहीं एनर्जी होगी। एनर्जी वहां भी है जहां मैटर नहीं है। ये जो कॉस्मस आप देखते हैं, द यूनिवर्स, तो कहते हैं ये जो यूनिवर्स आप जिसको गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सब आप देखते हैं, जिसको आप देख भी नहीं सकते, तो ये जो एग्जिस्टेंट है, ये जो यूनिवर्स है, उसका मुश्किल से 24% है विजिबल, अनविजिबल। बाकी 3/4 मतलब अबाउट 75% एनर्जी है, और उसको कहते हैं डार्क एनर्जी। मतलब ऐसी एनर्जी जिसका कोई मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ है, इसको जानना मुश्किल है। मतलब जहां जहां मैटर किसी भी फॉर्म में है वो तो एनर्जी है ही है, जहां मैटर भी नहीं है वो भी एनर्जी है, सर्वव्यापक है। और एनर्जी का फॉर्म क्या है? कोई फॉर्म नहीं है। मतलब जब तक आप अकाय नहीं बनेंगे, अकाय समझते काय कितने शरीर, कोई भी जीव जब काय को छोड़ देता है, बॉडी लेस होता है, इट इज द फर्स्ट कंडीशन टू बी ऑल फॉरबिडिंग। और जैसे ही आपके पास एक शरीर आया, एक फॉर्म आया, एक रूप आया, तो आप लिमिटेड होते जाएंगे। तो ईश्वर को या तो आप ऑल फॉरबिडिंग मानेंगे नंबर वन, तो फिर इट हैज टू बी फॉर्मलेस। अगर उसका कोई फॉर्म आप मानते देन बाय डिफॉल्ट आपको मानना पड़ेगा कि वो लिमिटेड है। आपको अगर लगता है कि वो सातवें आसमान में है, चौथे आसमान में है, कैलाश पर्वत पर है, खीर सागर पर है, माइथोलॉजिकल स्टोरीज के हिसाब से आप भगवान की जगत चूज करते हैं, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आप मानते हैं कि ईश्वर जो है वो लिमिटेड है। नो प्रॉब्लम। सपर्यगा शुक्र मकाय मश्र मकायम। अगर है फिर जाना क्यों नहीं जाता? जान तो हम बहुत सारे चीजों को नहीं सकते, वो उसका प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम जान नहीं पाते हैं। हमारे इंद्रियों की प्रॉब्लम है, इंद्रियां लिमिटेड है, उनकी पावर की लिमिटेशन है। आपकी आंखें एक सर्टन दूरी तक देख सकता है, सर्टन चीजों को देख सकता है, बहुत छोटी हो नहीं देख सकते, बहुत बड़ा हो नहीं देख सकते। आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं देख सकते, देखेंगे तो गलत दिखेंगे। आपके पीछे हो तो नहीं देख सकते, कोई कर्टन पड़ा हुआ हो तो नहीं देख सकते। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रीजंस कि कोई चीज हो और हम ना देख पाए। लोगों में बड़ी, खास करके यंग जनरेशन में, कॉलेज गोइंग बच्चों में, और एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो मानते हैं कि ईश्वर नहीं है, बिकॉज अगर होता तो फिर बाकी चीजों के तरह देखते, सुनते, सुनते, जानते, कभी कोई जान तो नहीं पाता। प्रॉब्लम है कि जो लोग को मानते हैं कि ईश्वर नहीं है या क्योंकि हम उसको जान नहीं पाते, प्रॉब्लम है कि हमने जानने की कब कोशिश की। विवेकानंद स्वामी विवेकानंद जी जब यंग एज में कॉलेज जाते थे, वो भी नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट्स की तरह अपने आप को बड़े ज्यादा सयाने, जो कहते हैं ना, बड़ा प्रोग्रेसिव मानना। प्रोग्रेसिव मानने का पहला डेफिनेशन है कि आप ईश्वर को नहीं मानेंगे, आप कल्चर को नहीं मानते, आप सिस्टम को नहीं मानते। ये थोड़ा प्रोग्रेसिव दिखाने का कुछ कंडीशंस होते हैं। आप भी हो सकते हैं अपने टीन एज में, जब हाई स्कूल में थे, कॉलेज में थे, इसी तरह का एटीट्यूड रखा होगा। जैसे जैसे बड़े होते गए तो आपकी धीरे धीरे पॉजिटिविटी बनने लगी, सो इट्स नेचुरल सेंस। कुछ लोगों को एज होने के बावजूद भी उन इंटेलेक्चुअली मैच्योर नहीं हो पाए, तो टीन एज के माइंड सेट के साथ 70 साल में भी रह गए, तो उनके एटीट्यूड 70 साल में भी वैसे ही दिखता, वो दैट्स अ डिफरेंट मैटर। तो विवेकानंद कॉलेज स्टूडेंट थे तो बड़े नास्तिक थे, जैसे कि नॉर्मली होते हैं बच्चे, पर वो थोड़ा ज्यादा थे, किसी को मानते नहीं थे। तो उनके पिताजी जमींदार थे, घर में काफी सारे साधु सन्यासी गुणी ज्ञानी विद्वान प्रोफेसर लोग आया करते थे, और काफी डिस्कशन होता था फिलोसफी के ऊपर, बाकी चीजों के, सोसाइटी के ऊपर। पर उनका नाम था नरेंद्र दत्त, वो मानते नहीं थे, तो उनको पिताजी को बड़ी चिंता हुई, जैसे कि बहुत सारे हमारे पेरेंट्स को भी चिंता होती है, देखो हमारा ये बच्चा बिल्कुल तो ठीक था, संस्कृति संडे स्कूल भी जाता था, सब कुछ करता था, अब ये 10th में 11th में 12th में कॉलेज चला गया, बड़ा ही नास्तिक हो गया, कुछ नहीं मानता, कहीं नहीं जाना चाहता है, क्या करे आचार्य जी कुछ बताओ। कुछ कर ही नहीं सकते, वो एज है, अब छोड़ दीजिए। नरेंद्रनाथ की भी वही प्रॉब्लम था, कुछ नहीं मानता था। तो उनके पिताजी काफी जगह उसको लेकर जाते थे, क्योंकि काफी इंटेलिजेंट थे, तो डिस्कशन करते थे, उनको लेकर जाते थे। तो जब वो किसी साधु सन्यासी प्रोफेसर फिलोसफर के पास लेकर जाते थे, काफी डिस्कशन होता था, तो उसके बाद नरेंद्र दत्त पूछते थे, आपने कभी ईश्वर को देखा है? अविचार्य ऑनेस्टली कहते थे नहीं। तो अगर नहीं देखा तो मुझे क्यों समझाने की कोशिश करते हो? चैप्टर क्लोज हो जाता था। तो नरेंद्रनाथ वैसे कि वैसे रहे। एक दिन उनके फ्रेंड्स ने कहा कि एक हुगली नदी के किनारे वो काली मंदिर के पास एक बाबा बैठते हैं, वैसे लोग उन दिन उनको पागल बाबा कहते थे, जो उनके गुरु है रामकृष्ण परमहंस, क्योंकि पागलों की तरह बिहेव करते थे। पागल का मतलब होता है जो सिस्टम, जो एस्टेब्लिश सिस्टम है उसे हटके कुछ व्यवहार करे उसे पागल कहते हैं। मतलब कभी कभी आप अपने बच्चों को भी कहते होंगे जो थोड़ा आपके घर के रूल्स रेगुलेशन के अलावा, आपकी सोच के अलावा कुछ और करता होगा। मेंटली डिसऑर्डर सिर्फ पागल नहीं कहलाते हैं, हम जनरली भाषा में जो हमसे अलग सोचता है उसको भी हम पागल कह देते हैं। तो नरेंद्र नाथ को बोले एक बार उससे मिल लो, लोग बड़े उनको बड़ा ऊंचा मानते हैं, बहुत पहुंचे हुए मानते हैं। तो एक दिन उनको ले गए रामकृष्ण परमहंस के पास। तो जैसे ही नरेंद्र नाथ दत्त वहां पहुंचे तो वो पहले से ही बड़ा इरिटेटेड हो गए थे, क्योंकि उनके मां बाप फ्रेंड्स उनको हमेशा ये आस्तिक बनाने के चक्कर में हर जगह ले जाते थे। तो वो इतना सख्त अपना एटीट्यूड बना रखा था, पहले ही जाकर पूछ लेते थे बता भाई कुछ बताने से पहले ईश्वर को देखा है कि नहीं देखा, फिर आगे के एक दो घंटा मेरा वेस्ट मत करो, है ना। तो वो ले गए रामकृष्ण परमहंस के बाद छोटे से कुटिया में। जैसे ही अंदर गए तो उन्होंने पहले सवाल पूछा, भाई देखो जी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे बात करने का, पर मैं आपसे कुछ बताने से पहले एक सवाल पूछता हूं, आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण ने बड़े कॉन्फिडेंटली बोला देखा है। पहली बार किसी ने इतनी ऑनेस्टली, इतनी ऑनेस्टली का मतलब है कि व्यक्ति के आंसर में अगर कॉन्फिडेंस दिखे तो लगता है कि ऑनेस्ट है। तो बोला देखा है। अच्छा, तो थोड़ा दबे नरेंद्रनाथ, भाई कोई इतनी कॉन्फिडेंटली आंसर दे रहा है तो कोई जानता होगा, तो मुझे दिखा सकते हो? बोले दिखा सकता हूं, तो फिर दिखाओ फिर मानूंगा, बाकी ये डिस्कशन तो रखो बाद में। बोले दिखाता हूं, कब दिखाएंगे? बोले आपको कब देखना है? बोले अभी दिखा सकते हो तो दिखाओ। बोला अभी भी दिखाएंगे। कमाल है भाई, बड़े कॉन्फिडेंस तो कुछ ज्यादा ही है। क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, ये गंगा नदी है, हुगली नदी, एक बार उसमें डुबकी लगाना है, दैट्स इट। चलो ठीक है। नहीं, वो डुबकी मैं लगवाऊंगा। तो रामकृष्ण नरेंद्रनाथ को लेकर गए गंगा के किनारे। जैसे ही वो पानी के अंदर घुसे तो उनके सर पकड़ के जोर से पानी के अंदर डुबा दिया। अब डुबा दिया, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट वो छटपटा रहे थे बाहर आने के लिए, और खूब जोर से रामकृष्ण ने उसके सर दबा के रखा। जब देखा कि अब मुश्किल है तो उन्होंने उसके सर छोड़ दिया। बाहर आए तो लंबे 2-4 सांस ले लिया, हाँ भाई, और बड़े गुस्से में बोले, तो सच में तुम पागल हो? बोले ईश्वर दिखाने के चक्कर में तुम मार देते। रामकृष्ण मुस्कुराने लगे, बोले ठीक है आप जो भी बोलो, मुझे बस एक ही सवाल का आंसर दे दो, तू पानी के अंदर क्या सोच रहा था? क्या सोच रहा था? मैं सोच रहा था मुझे हवा चाहिए, सांस लेना है। और कुछ सोच रहा था? सांस चाहिए, और कुछ सोच रहा था? सोच रहा होगा कितना पागल है, सोच रहा होगा ईश्वर यहां कहां मिलेगा। कुछ नहीं, मुझे सांस चाहिए था, सांस, और कुछ नहीं। और जैसे ही पानी से बाहर आया तुमने सबसे पहले क्या किया? सांसों को लिया। बोले देखो, जिस दिन तुम्हारे अंदर ये तड़प आ जाएगा ना किसी चीज को पाने के लिए, वो चीज तुम्हें अचीव हो ही जाएगा। पहले उसको जानने की इच्छा पैदा करो, ये तड़प लाओ उसको जानने के लिए। जिस दिन तुम ऑनेस्टली उसको पाने की इच्छा करोगे, यही तड़प दिखाओगे कि मुझे उसको जानना है, जानना है, जानना है। मुझे सांसें बाद में लेनी है, पहले उसको जानना है। जैसे आजकल हम पैसे पहले कमाना है, घर बाद में देखेंगे, पढ़ते हैं तो पैसा कमा ही लेते हैं ना। मतलब अगर आप पैसे के पीछे पड़ जाते हैं, तड़प दिखाते हैं, तो पैसे वाले बन जाते हैं। अगर आप ज्ञान के पीछे पड़ जाते हैं तो ज्ञान कमा लेते हैं। तो जिस चीज के लिए आपके अंदर तड़प हो, आप फिजिकली मेंटली उसी के लिए इन्वॉल्व हो जाते हैं, बाकी चीजों को आप छोड़ देते हैं, कंप्रोमाइज करने लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप इसको अचीव नहीं कर सकते हो। कभी उसको खोजने के लिए ऑनेस्टली ढूंढने लगो, ये तड़प के साथ ढूंढने लगो, वो इंटेंसिटी के साथ ढूंढने लगो, फिर देखो मिलता है कि नहीं मिलता। फिर नहीं मिलेगा, जरूर आना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा क्या प्रॉब्लम है। देवियों सज्जनों, स्टोरी का जो मोरल यही है, हमें जो बोलता है या नहीं है, उन किसी को, मोस्ट ऑफ लोगों को ईश्वर होने ना होने से कोई मतलब ही नहीं है। हम तो सिर्फ टी पार्टी में डिस्कशन करने के लिए ट्रंप अच्छा है या बुरा हुआ, जैसे ही मजे लेकर डिस्कस करते हैं, वोट देने तब भी नहीं जाते। मजेदार बात क्या है पता है, जो जितने लोग पॉलिटिक्स में देखेंगे, पूरी जिंदगी डिस्कस करते हैं, टी पार्टी से लेकर घर से लेकर शादी ब्याह तक, जहां बैठ जाए शुरू हो जाएंगे, ट्रंप अच्छा है कि बुरा, ओबामा अच्छा है कि बुरा, डेमोक्रेटिक अच्छा है कि रिपब्लिकन अच्छा है, मोदी चोर है कि राहुल चोर है, ये कोई वोट देने नहीं जाता है। और जाते हैं तो 10% 20% मुश्किल से होंगे। मैं अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं है तो उसके अपोजिट को वोट देकर आओ। अच्छा, जो बेचारे वोट देते हैं वो बहुत ज्यादा डिस्कस भी नहीं करते। यही चीज यहां भी है, ईश्वर है नहीं है, हम सिर्फ इंटेलेक्चुअली वो उसको क्या कहते हैं, वो चबाते रहते हैं। जिन लोगों ने खोजने की कोशिश की उन्होंने पाया, अगर नहीं भी पाया उसके आसपास पहुंचे। जिस दिन आप रियली पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दिखाएंगे, उस पानी में डूबेंगे, आप भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं तो कांग्रेस में अन बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं तो स्टेट कांग्रेस में अन बन सकते हैं, नहीं बन सकते तो काउंसिलर बन सकते हैं, नहीं बन सकते तो पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर तो बन ही सकते हैं। पर अगर आप इन्वॉल्व ही नहीं है, सिर्फ वाणी सुनते हैं और बोलते हैं, तो पूरी जिंदगी कोई भी आए आपके लिए सिर्फ मैटर चाहिए, कुछ गप्पे लड़ाएं, दैट्स इट। ईश्वर को पाने की इच्छा रखेंगे, तड़प रखेंगे, प्रायोरिटी देंगे, फिर बात आती है कि नहीं पता चलेगा। वो पर्यगात है, सब जगह है, क्योंकि वो अकाय है, बॉडीलेस है, वो शुक्रम है, ब्रिलियंट है, चमकीला है। आप बोलते ना ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में सेकेंड मंत्र बोलते हैं, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। वो हिरण्यगर्भ है, क्या मतलब है, जिसके गर्भ में, जिसके अंदर इनसाइड हिरण्य है, चमक है, प्रकाश है। जब ये यूनिवर्स बना, जिसे आप कहते हैं, जो उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है, बिग बैंग हुआ, उससे पहले क्या था किसी को नहीं पता, एनर्जी थी, कंडेंस्ड फॉर्म में थी, ब्लो हुआ, फटा, बड़ा आवाज हुआ, साउंड भी वहीं से पैदा हुआ, फिर धीरे धीरे यूनिवर्स पैदा हुआ। इसी को हमारे वेद शास्त्र धर्मशास्त्र अपनी भाषा में कहते हैं, क्योंकि सारा संसार प्रलय में ईश्वर के अंदर होता है, प्रकृति के रूप में, सत्व रजत तमों की कंबिनेशन के रूप में। जब सृष्टि को होना होता है, प्रलय से बाहर आना होता है, तो वह एनर्जी एक्सप्लोइट करता है, फिर धीरे धीरे एनर्जी कंडेंस्ड होकर के मैटर में कन्वर्ट होता है, फिर वो स्टार्स बनते हैं, जो भी बनते हैं, अब धीरे 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 प्लैनेट्स बन के कुछ लाइव प्लैनेट्स भी बन जाते हैं। हिरण्यगर्भ, ये सारा यूनिवर्स उसी के अंदर है, और यूनिवर्स के जो बेसिक चीजें हैं वो स्टार्स हैं, इसीलिए वो हमेशा चमकीला होता है। वो अकाय भी है, क्योंकि उसकी बॉडी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो सारे यूनिवर्स का मालिक है, नेचुरली उसके अंदर कोई छेद वगैरह हो भी नहीं सकता, कोई वाइंस या कोई स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, वो शुद्ध है। शुद्ध का अर्थ होता है प्योर, प्योर का अर्थ होता है जिसमें कोई इंप्यूरिटी नहीं है। दो तरह की शुद्धता है, आप भी शुद्ध हैं, प्योर हैं, आपके शरीर, आपके कपड़े, पर आप अपने कपड़ों की, शरीर की प्योरिटी के लिए आपको रोज मेहनत करनी पड़ती है, रोज नहाते हैं, कोई एक बार नहाता है, कोई दो बार नहाता है, कपड़े धोते रहते हैं, साफ करते रहते हैं। मान लीजिए कि आप एक महीने तक नहीं नहाते हैं तो क्या होगा, बॉडी से स्मेल आने लगेगा, बीमारी पड़ने लगेगी। वो गंदगी कहां से आई, बाहर से आई। ये बॉडी का नेचर है, केवल बाहर से गंदगी नहीं आती है, बॉडी के अंदर से भी गंदगी निकलती है। ये बॉडी का बाय नेचर बॉडी इम्प्योर है, तो उसको प्योर रखने के लिए आपको कंस्टेंट एफर्ट करना ही पड़ता है। तो बॉडी बाय नेचर इम्प्योर होता है, इम्प्योर मतलब गंदा होता है। आप उसको साफ रखने के लिए रोज नहाना पड़ेगा, रोज साफ करना पड़ेगा। आपको रोज मुंह साफ करते हैं, नाक साफ करते हैं, आंख साफ करते हैं, शरीर साफ करते हैं। तो हमारे शरीर की जो शुद्धता है ये अक्वायर्ड है, हम इसको अचीव करना पड़ता है, बाय नेचर नहीं है। आपका घर अगर साफ है वो बाय नेचर साफ नहीं है, आपको वैक्यूम करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, ब्रूमिंग करनी पड़ती, साफ करनी पड़ती है। दो चार महीने साफ मत करिए, धूल जम जाता है। आत्मा वैसा शुद्ध नहीं है, वो बाय नेचर शुद्ध है। शुद्धता उसका नेचर है, उसकी क्वालिटी है। फिर अशुद्ध क्यों दिखता है, क्योंकि जब आप अशुद्ध चीजों के बीच में रहते हैं तो अशुद्ध दिखता है। घर में लाइट है, दिया जलता है, पर अगर आप ब्लैक कर्टन चारों तरफ लगा देंगे तो रोशनी बाहर नहीं आ सकती। इसका अर्थ नहीं है आप ब्लैक कर्टन के बाहर अंधेरा है, इसका अर्थ नहीं कि दिए का लाइट अंधेरा होता है। दिए के लाइट के साथ, क्योंकि ब्लैक कर्टन आपने बना रखा है इसीलिए बाकी सब ब्लैक दिखता है, अंधेरा दिखता है। पर रोशनी का जो स्वभाव है वो अंधेरा वाला नहीं है। ब्लैक कर्टन हटा दीजिए, दिए की रोशनी जहां तक जाना है वहां तक जाएगा, प्रकाश करेगा। आत्मा बाय नेचर शुद्ध है। माइंड बॉडी और माइंड और बॉडी के थ्रू इस सारे दुनिया के साथ जब हमारा कनेक्शन है वो हमारे आत्मा को टेम्पररीली डस्टी बना देता है, धूल से भरा हुआ बना देता है। हर इतना ज्यादा धूल भर देते हैं पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर कोई आत्मा होती है कि नहीं होती है। बिल्कुल वैसे अगर किसी के हीरा खो गया कहीं से गलती से मिट्टी में और उसके धूल गोबर जमा हो गया तो अब रात को रोशनी नहीं होती है। इसीलिए नहीं होती है कि वहां हीरे का हीरा नहीं है। हीरे का नेचर होता है साइन करना, प्रकाश करना, बाय नेचर। तो आपको अगर समझदार है, अगर नासमझ है तो आप दूसरा हीरा लाएंगे, दूसरी लाइट लाएंगे। अगर समझदार हैं, आपको पता है यहां हीरा है पर तब भी लाइट नहीं हो रही है, तो ओनली थिंग यू हैव टू डू कि उसके ऊपर के डस्ट को हटा दीजिए, गंदगी को हटा दीजिए, तो हीरे अपने आप में चमकने लगेगा। आत्मा उस हीरे की तरह होता है जो बाय नेचर शुद्ध है। मां मदालसा उपनिषदों में कहानी आती है, अपने बच्चे को समझाती है, छोटे बच्चे को, जैसे आप लोरी सुनाते हैं ना, लोरी सुना के समझाते हैं, तो मदालसा अपने बच्चे को लोरी सुना के समझाती है। क्या लोरी सुनाती है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तुम बाय नेचर शुद्ध हो मेरे बेटे, तुम बुद्ध हो, एनलाइटेन हो, तुम डिवाइन हो, तुम्हारे अंदर जो कमियां है वो तुम्हारे कारण नहीं, वो मेरे और समाज के कारण है। इस संसार में जो रहते हो इसके कारण तुम्हारे में कमियां है। तुम तो बाय नेचर पूर्ण हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो, स्टेनलेस हो, कलंक रहित हो, निरंजन हो। तो ये आत्मा का स्वभाव है शुद्धता। अगर हम अपने आप में वो इम्प्यूरिटी फील करते हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हमारा जो इंटरैक्शन है दुनिया के साथ, हमारे माइंड का, इंटेलेक्ट का, सेंसेस का, बॉडी का। बाकी की चीजें हम अगले रविवार को जानने की कोशिश करेंगे, उस आत्मा और परमात्मा के बाकी जो भी गुण है, निर्गुण और सगुणता के जो अलग अलग गुण स्वभाव है, उसके बारे में हम अगले बार जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।